नमो हरे हरे। हरे कृष्ण। आज मेरा यह सौभाग्य है कि मैं आप सबके बीच में भगवान कृष्ण के बारे में मुझे कुछ बोलने का अवसर मिल रहा है। जन्माष्टमी ये वैष्णव के लिए बहुत महत्वपूर्ण दिवस है, क्योंकि वो दिन है जब स्वयं भगवान कृष्ण इस धरती पर प्रकट हुए। श्रीमद् भागवत में बताया गया है कि भगवान के अनेक अवतार हैं, जैसे राम, नरसिंह, वराह, कूर्म, हयग्रीव। जैसे सागर की लहरें अनंत होती हैं, वैसे भगवान के अनंत अवतार हैं। लेकिन कृष्णास्तु भगवान स्वयं, कृष्ण स्वयं भगवान हैं। वे अवतार नहीं हैं, बल्कि वे सारे अवतारों के स्रोत हैं। सारे अवतार उनसे ही आते हैं। तो कृष्ण के तत्व को जानना चाहिए। भगवान कृष्ण गीता में बताते हैं, जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेति तत्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नेति मामेति सुअर्जुन। भगवान कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं कि हे अर्जुन, जो व्यक्ति ये जान लेता है कि मेरे जन्म और कर्म दिव्य हैं, वो इस भौतिक संसार में फिर नहीं आता, वो वापस गोलोक वृंदावन लौटता है। कृष्ण के जन्म दिव्य है, इसका अर्थ क्या है? अभी साधारण व्यक्ति जब जन्म लेता है तो कर्मों के नियम के अनुसार लेता है। जैसे मैं या आपने जन्म लिया, हमें स्वयं को कोई पता नहीं था कि कहाँ जन्म लेना है, नहीं हमने अपने माता पिता का चयन किया। लेकिन जब भगवान कृष्ण प्रकट होते हैं तो अपनी इच्छा से प्रकट होते हैं। उन्होंने चुना कि मुझे वसुदेव और देवकी के यहाँ पे जन्म लेना है, नंद और यशोदा के यहाँ पर लीला करनी है। तो ये जो भगवान की जो जन्म है और उनके कर्म हैं, सब इस भौतिक स्तर से परे हैं। वास्तव में तो भगवान सब जगह पर हैं। भगवान अंदर हैं, बाहर हैं, पास से पास भी भगवान हैं, दूर से दूर भी भगवान हैं। लेकिन भगवान का जन्म लेना ये एक गुह्य चीज़ है। इस तत्व को हम तभी जान सकते हैं जब हम श्रील प्रभुपाद जैसे आचार्यों के मुख से सुनते हैं, जब हम वैष्णव के मुख से भगवान के तत्व को सुनते हैं, तो उसके द्वारा भगवान को हम जान सकते हैं। भगवान गीता में आगे बताते हैं, अजोपि सन अव्ययात्मा भूतानाम ईश्वरोपि सन प्रकृतिम स्वामधिष्ठाय संभवामि आत्ममायया। भगवान बोलते हैं, मैं अजय हूँ, मेरा जन्म नहीं होता। मैं अव्यय हूँ, मेरा नाश भी नहीं होता। अजोपि सन अव्ययात्मा भूतानाम ईश्वरोपि सन, मैं सबका ईश्वर हूँ। ब्रह्म संहिता में भगवान के बारे में बताया गया कि वे सब कारणों के कारण हैं। ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिर आदिर गोविंद सर्व कारण कारणम। कृष्ण सब कारणों के कारण है, वे सब ईश्वरों के ईश्वर हैं। एकल ईश्वर कृष्ण आर सब भृत्य जारे जैचे न चाय से तैचे करे नृत्य। कृष्ण ईश्वर हैं, वो भगवान हैं, और वो जिसको नचाते हैं, जैसे नचाते हैं, सब वैसे ही नाच रहे हैं। लेकिन वो जो भगवान जो सब ईश्वरों के ईश्वर हैं, वो अपनी इच्छा से नंद महाराज और यशोदा के घर में लीला करते हैं, अपनी इच्छा से देवकी के गर्भ से प्रकट होते हैं। तो भगवान बताते हैं, जब मैं प्रकट होता हूँ तो मैं माया के अधीन नहीं होता। संभवामी आत्ममाया प्रकृतिम स्वामधिष्ठाय, प्रकृति को अधीन करके अपनी इच्छा से मैं प्रकट होता हूँ। भगवान के इस धरती पर आना उनकी स्वेच्छा से है। हम जन्म लेते हैं कर्मों के नियम के अनुसार, लेकिन कृष्ण प्रकट होते हैं अपनी इच्छा से। कृष्ण शाश्वत रूप से गोलोक वृंदावन में वास करते हैं, और जब उनके आने का समय आता है तब उससे पहले उनका धाम प्रकट होता है और उनके परिकर प्रकट होते हैं। तो भगवान का जन्म को इस तरह से समझा जा सकता है कि भगवान अपनी लीलाओं को प्रदर्शित कर रहे हैं जिससे भक्तों के मन को आकर्षित कर सके। गीता में भगवान कृष्ण अपने आने का उद्देश्य बताते हैं, परित्राणाय साधुनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामी आत्ममाया। भगवान बोलते हैं कि मैं साधु पुरुषों की रक्षा के लिए आता हूँ और मैं दुष्टों का नाश करने के लिए आता हूँ, अपनी इच्छा से प्रकट होते। तो ये जन्म का रहस्य है कि भगवान का जन्म जो है वो भौतिक नियम से परे हैं, वे स्वराट हैं और उनके कर्म भी दिव्य हैं। इसका अर्थ क्या है? भगवान के कर्म दिव्य हैं मतलब कि भगवान की सारी लीलाएं जो हैं वो अपनी इच्छा से हैं और उनकी क्रिया ऐसी है कि इसको सुनने से मानवता का कल्याण हो सकता है। हम सबको कोई ना कोई चीज़ सुनने की आदत होती है। कुछ लोग मैगजीन्स पढ़ते हैं, कुछ लोग टेलीविज़न देखते हैं, सिनेमा देखते हैं, क्योंकि हमारे अंदर उत्सुकता होती है किसी व्यक्ति के बारे में सुनने की और जानने की। लेकिन यही प्रवृत्ति जो किसी के क्रियाओं के बारे में सुनने की है, अगर उस प्रवृत्ति का उपयोग हम भगवान कृष्ण के बारे में सुनने में लगाते हैं तो उससे हमारा चित्त पावन हो जाता है और हम भगवान की प्राप्ति कर सकते हैं। भगवान कृष्ण के बारे में सुनना इसका मतलब साक्षात भगवान का संग करना है। जब हम भगवान की लीलाओं को सुनते हैं, जैसे पूतना वध लीला है या तृणावर्त के वध की लीला है या भगवान गिरिराज गोवर्धन को एक अंगुली पर धारण कर रहे हैं, तो ये लीला को सुनना मतलब वास्तव में उन लीलाओं का भाग लेने के बराबर है। शब्द ध्वनि जो शब्द ब्रह्मन है, जो दिव्य शब्द ध्वनि है, उसके द्वारा हम भगवान का संग कर सकते हैं। तो भगवान के सारे कार्य दिव्य हैं। जब भगवान छोटे बालक थे, भगवान ने पूतना का वध किया। पूतना भयानक राक्षसी थी जो अपने स्तनों में जहर लगाकर आई थी, और भगवान कृष्ण ने उनके दूध के साथ साथ उनके जहर को भी निकाल दिया और उनका अंत कर दिया। अभी जिस समय भगवान ने पूतना का वध किया तब भगवान की उम्र सिर्फ 3 महीने की थी। जनरली 3 महीने के बालक में ज़्यादा शक्ति नहीं होती, लेकिन कृष्ण 3 महीने के बालक होने पर भी इतने शक्तिमान थे कि उन्होंने पूतना जैसे विशाल राक्षसी, जो कि एक डायन थी, खेचरी, जो बहुत ही क्रूर थी, उसको बड़े आसानी से मार दिया। तो ये जो कृष्ण की लीलाएं हैं वो अति मानवीय हैं। तो हमें भगवान को हमेशा उनकी क्रियाओं को जानना चाहिए, वो सुपर ह्यूमन एक्टिविटीज़ हैं। भगवान कृष्ण ने जब 7 वर्ष की उम्र थी तो उन्होंने गिरिराज गोवर्धन धारण किया। आप सब जानते हैं वो कथा कि जब इंद्र की पूजा भंग हो गई थी तब इंद्र ने क्रोध में आकर समवर्तक बादलों को भेजा कृष्ण का अंत करने के लिए, ब्रजवासियों को मारने के लिए। जब ब्रजवासियों ने देखा कि हमारा कोई आश्रय नहीं है, इतनी जोर से मूसलधार बरसात हो रही है, सारे गाय खतरे में हैं, तो उन्होंने कृष्ण को पुकारा, कृष्ण कृष्ण, जोर से बोली कृष्ण कृष्ण। मान लो अभी आप हॉल से बाहर निकलते हैं, बहुत जोर जोर से बरसात हो रही है, आपके पास शायद छतरी या रेनकोट नहीं है, तब आप कैसे पुकारेंगे? वैसे आप जोर से पुकारिए कृष्ण कृष्ण। कल जन्माष्टमी का उपवास है लगता है, आज भी आप उपवास कर रहे हैं, थोड़ा जोर से बोलिए कृष्ण कृष्ण। राधा कुंज बिहारी मंदिर तक आवाज जानी चाहिए, इतना जोर से बोलिए कृष्ण कृष्ण। है Has it reached? The voice has reached. तो ब्रजवासी जब कठिनाई में होते हैं तो कृष्ण को पुकारते हैं. एक भक्त का लक्षण है कि जब भी वो खतरे में होता है तब वो कृष्ण को याद करता है, क्योंकि कृष्ण हमारे परम मित्र हैं. कृष्ण ही है जो कि रक्षक हैं. शरणागति का मतलब है ये जानना, रक्षति कृष्ण इति विश्वासो. कृष्ण मेरी रक्षा करेंगे, कृष्ण मेरा पालन करेंगे, मुझे किसी का डर नहीं है क्योंकि कृष्ण मेरे साथ है. तो ब्रजवासियों ने जब कृष्ण को पुकारा तो कृष्ण तुरंत अपनी नन्ही से उंगली से, बाएं हाथ से गिरिराज गोवर्धन को एक उंगली पर धारण किया. ये विशाल पर्वत है. आप में से जो लोग ब्रज गए हैं आपने देखा ये पर्वत की परिक्रमा करीब 21 किलोमीटर की परिक्रमा होती है. अभी इतने विशाल पर्वत को बाल गोपाल ने, जिनकी उम्र सिर्फ 7 वर्ष है, अपने नन्ही सी उंगली पर धारण किया. और ऐसा नहीं है कि कृष्ण ने कोई अभ्यास किया था, पहले 10 किलो उठाना, फिर 20 किलो उठाना, फिर एक 100 किलो उठाना, वेट लिफ्टिंग एक्सरसाइज. कृष्ण ने ऐसे उठा लिया जैसे एक छोटा बच्चा कोई फूल को उठा लेता है, जैसे हाथी का बच्चा कोई गन्ने की डंडी को तोड़ देता है. ऐसे भगवान ने बड़े आसानी से गिरिराज को अपने पर्वत को अपने उंगली पर धारण किया. 7 दिन 7 रात्रि तक. इसको बोलते हैं भगवान. आजकल भारत में बहुत सारे भगवान के अवतार हो रहे हैं. मद्रास में भी एक भगवान हुए हैं, हरिद्वार में आप जाओ तो भगवान की लाइन लगी हुई है. भगवान में भी कंपटीशन होते हैं. लेकिन वास्तव में अगर कोई व्यक्ति कहता है मैं भगवान हूँ तो उसे कहना चाहिए आप भगवान हैं, आज शनिवार का दिन है, आप ये गिरिराज नहीं है खाली टेबल को उठाइए एक उंगली पर अगले शनिवार तक, और तब हम स्वीकार करेंगे आप भगवान हैं. तो भगवान की क्रियाओं से भगवान को जाना जा सकता है. जन्म कर्म चमे दिव्यम का अर्थ है कृष्ण ऐसी क्रिया करते हैं जो साधारण मानव नहीं कर सकता. कृष्ण का मतलब है सर्व आकर्षक, सबसे सुंदर, सबसे बलशाली. जब भगवान कृष्ण मथुरा में गए तो कंस ने एक हाथी को रखा था, कुवल्या पीड़ हाथी, जो भगवान कृष्ण पर आक्रमण करने के लिए आए, लेकिन भगवान ने बड़े चतुराई के साथ उसको खींचकर जमीन पर गिराकर उसका अंत कर दिया बिना कष्ट के. तो ये भगवान की क्रियाएं हैं जो कि इस भौतिक जगत से परे हैं. जन्म कर्म चमे दिव्यम का अर्थ है भगवान की सारी क्रियाएं दिव्य हैं. या भगवान माखन चोरी लीला करते हैं वो भी दिव्य है. भगवान के घर में, नंद महाराज के घर में 9 लाख गैया थी, 9 लाख गाय, लेकिन फिर भी भगवान चोरी करने जा रहे हैं. क्यों? घर में बहुत दूध है, दही है, मक्खन है, फिर दूसरे घर में क्यों जा रहे हैं? क्योंकि कृष्ण भक्तों के हृदय के प्रेम के ऑफरिंग को स्वीकार कर रहे हैं. इस दुनिया में अगर कोई चोरी करे तो उसको तुरंत पुलिस के हवाले कर दिया जाता है कि नहीं? लेकिन जब कृष्ण चोरी करते हैं तो सब बोलते हैं माखन चोर नंद के लाला की जय. अभी मैं और आप चोरी करें तो पुलिस स्टेशन की जाए. तो इसलिए हमें भगवान की नकल नहीं करनी चाहिए, भगवान की सेवा करनी चाहिए. क्योंकि जीव कभी भगवान बन नहीं सकता, जीव हमेशा भगवान का सेवक रहता है. जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्य दास. हम दास हैं और दास बनना ही हमारी जीवन की सफलता है. भगवान बनने का प्रयास मूर्खता है क्योंकि आप भगवान बन ही नहीं सकते. भगवान ऑलरेडी भगवान हैं, भगवान कभी बनते नहीं हैं. ऐसे सूर्य प्रकट होता है सवेरे के समय और शाम को उसका अस्त हो जाता है. मूर्ख व्यक्ति सोचेगा ओ सुबह सूर्य का जन्म हो गया, हैप्पी बर्थडे सन, और शाम के समय ओ सॉरी गुड बाय सन. लेकिन सूर्य तो शाश्वत है. वैसे भगवान प्रकट होते हैं और अप्रकट होते हैं, लेकिन वास्तव में उनकी लीला जो है वो शाश्वत है. अतः श्री कृष्ण नामादि न भवेद ग्राह्यम इंद्रिय सेवन मुखे ही जीवहादो स्वयं एव स्फुरति अदः. भगवान का नाम, उनका रूप और गुण और लीला, इसको भौतिक इंद्रियों के द्वारा नहीं जाना जा सकता. लेकिन जो भक्त सेवा में लगा है, सेवन मुखे ही जिह्वा दो, जो जिह्वा से भक्ति की शुरुआत होती है, तो वो भगवान की सेवा में लगने से भगवान के तत्व को जाना जा सकता है। और जिह्वा का अर्थ है, जिह्वा से दो क्रिया की जाते हैं, एक तो प्रसाद लेना और दूसरा है भगवान का नाम गाना। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कृष्ण अपने नाम से अभिन्न है, इसलिए जहाँ पर कृष्ण का नाम कीर्तन होता है वहाँ पर कृष्ण उपस्थित हो जाते हैं। जैसे आज से 5000 साल पहले भगवान कृष्ण मथुरा में प्रकट हुए, कंस के जेल में, जहाँ पर भगवान का नाम कीर्तन होता है वहाँ पर भी कृष्ण प्रकट होते हैं। भगवान कृष्ण कहते हैं नारद मुनि से, हे नारद, नाहम वसामी वैकुंठ, मैं वैकुंठ में वास नहीं करता और न ही मैं योगियों के हृदय में वास करता हूँ। यत्र गायन्ति मद भक्त तत्र तिष्ठामि नारद, जहाँ पर मेरे भक्त कीर्तन करते हैं वहाँ पर मैं उपस्थित हो जाता हूँ। तो जन्माष्टमी का मतलब है कृष्ण को हमारे हृदय में बुलाना। कई बार हम सोचते हैं जन्माष्टमी मतलब साल में वो दिन जब हम अभिषेक करें भगवान का, और कोई कल्चरल प्रोग्राम्स हो जाएं और फिर हम घर में चले जाएं अच्छी तरह से। लेकिन जन्माष्टमी का मतलब इससे ज़्यादा गहरा है। कृष्ण जब बद्ध जीव के हृदय में प्रकट होते हैं तो उसको जन्माष्टमी कहा जाता है। जब भगवान वसुदेव और देवकी के यहाँ पर प्रकट हुए, आप सब कथा को जानते हैं कि कंस देवकी को मारने पे तुला हुआ था, लेकिन वसुदेव जी ने कंस को समझाया कि आपको देवकी के 8वें गर्भ से डर है, आपको डर जो है देवकी से नहीं 8वें गर्भ से, मैं आपको एक एक संतान देता जाऊंगा, आप जो चाहे कर सकते हैं। तो आप सब कथा को जानते हैं, मैं संक्षिप्त में बोल रहा हूँ कि वसुदेव जी ने एक एक करके सब 6 बच्चे दिए और कंस ने उसका वध कर दिया। और फिर 7वें संतान का समय आया, 7वें संतान बलराम जी थे, अनंत शेष। भगवान कृष्ण ने योगमाया को आदेश दिया कि हे योगमाया, तुम देवकी के गर्भ में स्थित इस बालक को रोहिणी के गर्भ में स्थानांतरित कर दो। तो योगमाया ने ऐसे ही किया और फिर 8वें गर्भ का समय आया, 8वें गर्भ के रूप में स्वयं कृष्ण प्रकट हुए। तो जब कृष्ण प्रकट हुए तो अंधेरी रात्रि में उजाला हो गया, वसुदेव देवकी के सारे बंधन कट गए और उन्होंने भगवान के साक्षात दर्शन किए, पहले चतुर्भुज रूप में और फिर भगवान से उन्होंने कहा कि आप छोटे बालक का रूप ही धारण करिए। तो जैसे ही कृष्ण प्रकट हुए सारे बंधन टूट गए, जैसे ही कृष्ण प्रकट हुए अंधेरे में उजाला हो गया। तो जन्माष्टमी का अर्थ है कि जब हमारे हृदय में कृष्ण प्रकट होंगे तो हमारे हृदय का अंधकार दूर हो जाएगा। ओम ज्ञान तिमिर अंधस्य ज्ञानांजन शलाके। हम गुरु को धन्यवाद देते हैं क्योंकि गुरु हमारे हृदय में अज्ञान के अंधकार को दूर करके ज्ञान प्रदान करते हैं। तो ये ज्ञान क्या है? ये कृष्ण तत्व का ज्ञान है। जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं वेति तत्वतः। तत्वतः मतलब इन ट्रूथ, तत्व से जानना। और तत्व से कौन जान सकता है? जो तत्ववेता से सुनता है। तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपतक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस् तत्वदर्शी। एक तत्वदर्शी तत्व ज्ञान दे सकता है। तो गुरु शिष्य के हृदय में कृष्ण भक्ति का ज्ञान देते हैं और कृष्ण प्रकट होते हैं शिष्य के हृदय में नाम के रूप में। तो जब कृष्ण नाम हृदय में प्रकट होता है तो वो वास्तविक जन्माष्टमी है। वास्तविक जन्माष्टमी का अर्थ है कि जब हमारे हृदय के जो अनर्थ हैं, काम क्रोध लोभ मद मोह, ये वो षड गर्भ हैं, और जब ये नष्ट हो जाते हैं तब फिर कृष्ण प्रकट होते हैं। कृष्ण सूर्य समम, माया है अंधकार, जहाँ कृष्ण तहाँ नाही माया अधिकार। कृष्ण सूर्य के समान है और माया अंधकार है, जहाँ पर कृष्ण प्रकट होते हैं सब अंधकार दूर हो जाते हैं, सब प्रकाश ही प्रकाश हो जाते हैं। तो जब हम सच्चे दिल से कृष्ण के नामों को पुकारते हैं, हरे कृष्ण कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, तो इस तरह से नाम पुकारने से कृष्ण प्रकट होते हैं। लेकिन एक चीज़ है, कृष्ण के प्रकट होने से पहले वसुदेव और देवकी को बहुत कष्ट सहन करने पड़े। देवकी ने एक एक करके 6 पुत्रों को अपने आँखों के सामने देखा मृत होते हुए, मारे जाते हुए, और बाद में फिर कृष्ण प्रकट हुए। तो हम भी अगर कृष्ण को अपने हृदय में प्रकट कराना चाहते हैं तो हमें भगवान के लिए कष्ट सहन करना चाहिए, भगवान की सेवा के लिए तकलीफें सहन करनी चाहिए। कृष्ण को प्रिय बनने के लिए हमें उनकी सेवा में तत्पर रहना चाहिए। एक दो घटनाएं मैं बताऊंगा जो कि महाभारत से हैं, जब बताते हैं कि हमें कैसे भगवान को अपने हृदय में बुलाना है, कैसे हम भगवान का नाम पुकारना है। अभी थोड़ी देर पहले श्री केशव प्रभु जी बहुत सुंदर आपको प्रवचन बता रहे थे, मैंने उसका कुछ भाग सुना, जिसमें वो बतला रहे थे कि कैसे कृष्ण का नाम लेना चाहिए। चैतन्य महाप्रभु जो स्वयं कृष्ण हैं, उन्होंने कृष्ण नाम पूरे मानवता के लिए वितरित किया है। स्वयं कृष्ण है, कृष्णाय कृष्ण चैतन्य, तो चैतन्य महाप्रभु ने हरि नाम दिया है, लेकिन ये हरि का नाम कैसे ग्रहण करना चाहिए, उसके लिए एक उदाहरण है महाभारत में द्रौपदी का। जब आप महाभारत की कथा जानते हैं कि दुर्योधन शकुनी एंड कंपनी ये सब छल कपट करके युधिष्ठिर को हरा देते हैं द्रुत क्रीड़ा में, पासा फेंकने में, और उस में हारने के बाद वो द्रौपदी की बेइज्जती करने पे तुले होते हैं। एक भरी सभा में एक पतिव्रता स्त्री के लिए इस तरह की बेइज्जती करना मृत्यु से ज़्यादा भयंकर होता है। द्रौपदी जब उस सभा में पहुँचती हैं तो वो देखते हैं उसके पति वहीं पर बैठे हैं। आप सोचिए कि कैसे महान उनके पति थे, भीम जैसे गदाधारी, गांडीव धनुष्य वाले अर्जुन, और इसके अलावा युधिष्ठिर, नकुल, सहदेव, स्वयं पितामह भीष्म और द्रोण। तो द्रौपदी उनसे मदद मांगते हैं लेकिन वो लाचार होते हैं, वो कुछ नहीं कर सकते। अंत में द्रौपदी सोचती है कि मैं अपने शारीरिक बल से अपनी रक्षा करूंगी, लेकिन वो सफल नहीं होती। जब वो जान लेती है कि अब मेरे एक ही आश्रय है भगवान कृष्ण, मेरा और कोई नहीं है सिवाय कृष्ण के, तो उस भावना से वो पुकारती है, हे कृष्णा हे गोविंद, हे कृष्णा हे गोविंद। जब द्रौपदी उस भावना से पुकारती है कि मेरा कोई भरोसा नहीं है और किसी पे कोई भरोसा नहीं है, सिर्फ कृष्ण ही हैं, तो कृष्ण प्रकट होते हैं असीमित वस्त्र के रूप में, अनंत वस्त्र, कोई सीमा ही नहीं होती। दुशासन थक जाता है लेकिन द्रौपदी की बेइज्जती नहीं होती। तो जिस भावना से द्रौपदी ने भगवान को पुकारा था, उस भावना से हम भगवान के नाम पुकारना चाहिए, तब जन्माष्टमी होगी। नहीं तो क्या होगा, हम अगर जप करते हैं और हरे कृष्ण कृष्ण राम 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 हरि बोल प्रभु, मैं झोपत नव तो मैं सो नहीं रहा था। वेन वी आर चैंटिंग द होली नेम वी शुड बी इन द मूड ऑफ द्रौपदी, द्रौपदी की भावना से कि कृष्ण ही मेरे सब कुछ है। सत्य यह है कि सिवाय कृष्ण के कोई नहीं है। प्रहलाद महाराज बोलते हैं बालस्य नेह शरणम पितरौ, कि एक बालक की रक्षा माता पिता नहीं कर सकते और न ही एक डॉक्टर एक वैद्य मरीज की रक्षा कर सकते हैं, सिर्फ कृष्ण, सिर्फ कृष्ण और सिर्फ कृष्ण, कृष्ण ही सब कुछ। और एक घटना है महाभारत में, जब पांडव वनवास के समय कामे वन में होते हैं तो दुर्वासा मुनि एक बार दुर्योधन से मिलने आते हैं और दुर्योधन उनको बहुत पेट भर के अच्छा प्रसाद खिलाते हैं और दुर्योधन फिर दुर्वासा मुनि को बोलते हैं अब आप पांडवों से मिलने जाओ, क्योंकि पांडव अब काम्य वन में हैं, आप पांडवों से मिलने जाओ और हाँ अपने 60,000 शिष्यों को साथ में लेकर जाना। दुर्वासा मुनि का छोटा सा ग्रुप हमेशा साथ में रहता था और उस समय जाना जब द्रौपदी ने प्रसाद ले लिया हो, क्योंकि द्रौपदी के पास एक बर्तन था उसको बोलते हैं अक्षय पात्र, अक्षय पात्र। तो द्रौपदी के पास वो बर्तन था अक्षय पात्र, तो उन्होंने बताया आप उस समय जाना जब द्रौपदी ने भोजन कर लिया हो, क्योंकि द्रौपदी जब भोजन कर लेती उसके बाद फिर उसने प्रसाद नहीं मिलता। द्रौपदी के भोजन करने से पहले जितने भी लोग आ जाएं सबके लिए प्रसाद हो जाता है। हमें यहाँ राधा कुंज बिहारी मंदिर में भी एक अक्षय पात्र रखना चाहिए, सब डिवोटीज को असीमित प्रसाद दे सके। तो अक्षय पात्र जब द्रौपदी ने भोजन कर लिया उसके बाद कुछ प्रसाद नहीं होता। तो अगले दिन दुर्वासा मुनि अपने 60,000 शिष्यों के साथ आए और युधिष्ठिर महाराज ने स्वागत किया, ओ ऋषि मुनि जी आइए, स्वागतम स्वागतम, वेलकम, आप प्रसाद लेंगे? दुर्वासा मुनि बोले इसीलिए तो आया हूँ मैं, प्रसाद के लिए आया हूँ। अब युधिष्ठिर महाराज सोचने लगे अब कुछ भी प्रसाद नहीं है, जंगल में कोई किचन भी नहीं है और अक्षय पात्र में अब कुछ भी नहीं है, क्या किया जाए? तब उन्होंने दुर्वासा मुनि से कहा आप थोड़ा यमुना में स्नान करके आइए, फिर उसके बाद जब तक हम प्रसाद तैयार करते हैं। दुर्वासा मुनि स्नान करने के गए और द्रौपदी युधिष्ठिर भीम सब बहुत चिंतित थे अब क्या किया जाए। तब द्रौपदी ने फिर से कृष्ण को पुकारा, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। द्रौपदी ने कृष्ण को पुकारा और कृष्ण तुरंत आ गए और कृष्ण बोले द्रौपदी मला भूख लागली लिया है, मुझे भूख लगी है, कुछ प्रसाद है? द्रौपदी बोले प्रसाद नहीं है इसीलिए आपको बुलाया। नहीं कुछ तो प्रसाद होगा, नहीं कुछ नहीं है। तब उन्होंने देखा अरे तो एक छोटा सा सब्जी का दाना था, एक पत्ता था और वो कृष्ण को दिया और जैसे ही कृष्ण ने खाया पूरा डकार आ गई उनको, कृष्ण संतुष्ट हो गए। यस्मिन तुष्ट जगत तुष्ट। और जैसे ही कृष्ण संतुष्ट हो गए दुर्वासा मुनि एंड कंपनी जो नदी में स्नान कर रहे थे सबका पेट फूल गया, सबको अचानक लगा कि अभी संडे फीस्ट खाया है जस्ट, सब एकदम फुल हो गए। तब भगवान कृष्ण बोले भीम जाओ दुर्वासा मुनि को बुला कर ले आओ। भीम बोले कि प्रसाद तो तैयार नहीं है कैसे बुलाएं? भगवान बोले मेरे पर श्रद्धा करो, आई एम ऑर्डरिंग यू, जाओ भरोसा करो और हाँ अपनी गदा को साथ में लेके जाना। भीमसेन गदा लेकर गए, प्रसाद इज रेडी, प्रसाद तैयार है। और दुर्वासा मुनि स्नान कर रहे थे, पेट भर गया था, वो सोचे द्रौपदी ने बहुत फीस्ट बनाया होगा, इतने सारे आइटम्स होंगे, अगर मैं प्रसाद नहीं लूँगा तो अपराध हो जाएगा। तो बोले भीम आप जाओ जाओ, हम दो मिनट में अभी आ रहे हैं, जस्ट प्लीज़ अभी आ रहे हैं आप चलो। तो भीम ने जैसे ही टर्न लिया जाने लगे दुर्वासा मुनि एंड कंपनी शॉर्टकट से भाग गए पीछे से। इस तरह से भगवान ने रक्षा की। अगर दुर्वासा मुनि आते और उनको प्रसाद नहीं मिलता तो शाप दे देते थे। तो भगवान ने द्रौपदी की रक्षा की, भीम की रक्षा की, युधिष्ठिर की रक्षा की। कौन्तेय प्रतिजानी ही नमे भक्त्या प्रणश्यति, हे कुंती के पुत्र अर्जुन ये घोषित कर दो कि मेरे भक्त का कभी नाश नहीं होता। और तीसरी कहानी है गजेंद्र की। आप जानते हैं गजेंद्र हाथी की कहानी। गजेंद्र एक बहुत अच्छे हाथी थे और वो जंगल के राजा थे। अधिकतर समय हम ऐसा मानते हैं कि जंगल के राजा शेर होता है, लेकिन जहाँ पर गजेंद्र रहता था वहाँ पर वही राजा था और उसको देखकर शेर भी डरते थे। शेर और चीता और बाघ वो गजेंद्र को देखकर ऐसे डरते जैसे पुसी कैट हो, छोटा सा बिल्ली हो, डर के मारे भाग जाते। तो गजेंद्र हाथी एक दिन अपने परिवार के साथ सरोवर में खेल रहे थे, शायद रविवार का दिन था, और बड़े आनंद से एक दूसरे पर पानी फेंक रहे थे। और अचानक मगरमच्छ ने उनके पैर पकड़ लिए। गजेंद्र पूरी शक्ति से लड़ रहे थे, खींचने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन मगरमच्छ बहुत शक्तिशाली थे। बहुत समय तक युद्ध चलता रहा, लेकिन आप जानते हैं पानी में मगर की शक्ति ज़्यादा होती है। ऐसा बोलते हैं ना, पानी में रहकर मगर से वैर नहीं करना चाहिए। तो पानी में रहने के कारण धीरे धीरे गजेंद्र की शक्ति कम हो गई। उसने देखा उसके रिश्तेदार मिसिस गजेंद्र, बेबी गजेंद्र सब वहीं पर थे, लेकिन कोई मदद नहीं कर सका। श्रील प्रभुपाद जी बोलते हैं, ये जो परिवार के सदस्य हैं ये फॉलिबल सोल्जर हैं। ऐसे सैनिक है कि लड़ाई के समय भाग जाते हैं, बहुत अच्छे सैनिक हैं, लड़ाई होते ही भाग जाते हैं, कोई मदद नहीं कर सकता अंत समय, सिर्फ कृष्ण और कृष्ण के भक्त। तो गजेंद्र ने देखा कोई मेरी मदद नहीं कर रहा, तब उसने पूर्व जन्म में जो श्लोक याद किए थे भगवान विष्णु को याद करने लगे, और स्वयं भगवान गरुड़ जी पर सवार होकर आए। गजेंद्र ने एक फूल उठाया और भगवान को अर्पण किया। भगवान तुरंत उसकी भक्ति से इतने प्रसन्न हुए, चक्र से उस मगरमच्छ के मुंह को काट दिया, अपने भक्त की रक्षा कर। श्री कृष्ण भगवान की जय। तो ये दो तीन घटनाएं दिखाते हैं कि कैसे भगवान को पुकारना चाहिए, जैसे गजेंद्र ने पुकारा, जैसे द्रौपदी ने पुकारा। हमारी स्थिति भी ऐसी ही है, हम इस संसार में हैं, ये माया का इलाका है, ये माया का सरोवर है, और एक काल रूपी मगरमच्छ इसने हमारे पैरों को पकड़ लिया है। कोई जानता हो या नहीं जानता हो, सत्य यह है कि हम सब बुढ़ापा, बीमारी और मृत्यु इस मगरमच्छ में है, और जस्ट किसी भी क्षण बंद हो सकता है। ये धीरे धीरे बंद हो रहा है, हम सोच रहे हैं अभी थोड़ा टाइम है अभी बंद होने की, तब तक मैं थोड़ा एंजॉय कर लूँ, लेकिन किसी भी क्षण हरे कृष्ण राम नाम सत्य है तो खूब चांगला भक्त होता गेला मृत्यु। तो अगर आप भक्ति में आगे बढ़ना चाहते हैं तो हमेशा ध्यान रखिए कि मृत्यु किसी भी क्षण आ सकती है। वी हैव टू क्राई टू कृष्ण, हमें कृष्ण को पुकारना है जैसे गजेंद्र ने पुकारा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। अगर आप बाहर जा रहे हो हॉल के और कोई मगरमच्छ आ जाए तो आप कैसे पुकारोगे? ऐसे नहीं पुकारोगे, उस भावना से पुकारिए कि आपका जीवन का आखिरी क्षण है, आपके लिए और कोई नहीं है सिवाय राधा कुंज बिहारी के, और सच्चे दिल से एक बच्चा जैसे माँ के लिए पुकारता है वैसे पुकारिए। हरे कृष्ण कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे। कलिकाले नाम रूपे कृष्ण अवतार, नाम हिते हय सर्व जगत उद्धार। चैतन्य चरितामृत में कहा गया है कि कलयुग में भगवान अपने नाम के रूप में आए, तो सच्चे दिल से भगवान के नाम को पुकारिए। जैसे श्री केशव प्रभु बता रहे थे, नियमित पूर्वक हरे कृष्ण मंत्र का जप करिए, भक्तों का संग करिए। आपका इतना सौभाग्य है कि यहाँ पर पूना में श्री राधा कुंज बिहारी मंदिर में भक्तों का संग आपको प्राप्त है, नियमित रूप से संग करिए। और श्रील प्रभुपाद इन्होंने बड़े मेहनत से भगवत गीता और भागवत और चैतन्य चरितामृत से ग्रंथों का अनुवाद किया है जो इंग्लिश, हिंदी, मराठी और कई भाषाओं में है। आज के दिन आप अपने साथ में ले जाइए। जन्माष्टमी का अर्थ है अपने हृदय को एक मंदिर बनाना जिसमें भगवान राधा कुंज बिहारी प्रकट हो सके, और वो तब होगा जब हम बिना अपराध के सच्चे दिल से भगवान को पुकारेंगे। हरे कृष्ण कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो अभी हम लोग कीर्तन करेंगे, आप जानते हैं कीर्तन जब किया जाता है तो हम द्रौपदी की तरह भगवान को पुकारते हैं। पहले मैं गाऊंगा, जब मैं गाऊंगा तब आप हाथ ऐसे जोड़ना, सब लोग जोड़ के दिखाइए प्रणाम मुद्रा, और जब आप गाओगे तो दोनों हाथों को ऊपर कर। हम लोग 5 मिनट बैठ के जब कीर्तन करेंगे और फिर 10 मिनट खड़े होके करेंगे। तो पहले हम बैठ के करेंगे 5 मिनट और उसके बाद 10 मिनट हम खड़े होकर दाएं पैर को बाईं तरफ और बाएं पैर को दाहिनी तरफ चैतन्य महाप्रभु की स्टाइल में कीर्तन में भाग लेंगे। कृपया उत्साह से गाइए, ऐसी भावना से गाइए कि हे भगवान राधा कुंज बिहारी, मुझे शुद्ध भक्ति दो, और जितने भी पूना में जीवात्मा हैं, जितने भी महाराष्ट्र में जीवात्मा हैं, जितने भी ब्रह्मांड में जीवात्मा हैं, सबको शुद्ध भक्ति दो, कोई दुखी नहीं रहे, सर्वे सुखन भवंतु, सर्वे सुख निरामय। इस भावना से आइए हम सब चैतन्य महाप्रभु की विधि के अनुसार हरे कृष्ण महामंत्र का गान करें। मैं आप सब भक्तों को धन्यवाद देता हूँ, स्पेशली मेरे सीनियर गुरु भाई हिज ग्रेस राधेश्याम प्रभु को धन्यवाद देता हूँ, उन्होंने मुझे यह सेवा का अवसर दिया। और मैं प्रार्थना करता हूँ कि आप सब श्रील प्रभुपाद जी की सेवा में लगे रहें। हरे कृष्ण। जायो श्री कृष्णा चैतन्या प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरा भक्तवृंदा। जय चैतन्या लाउडली चैतन्या प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरा भक्त वृंदा। जय श्री कृष्ण।
कृपया खड़े हो जाइए।
पांच मिनट के बाद
Hare Rama Hare